हेलो, मैं हूँ कहानी वाली कुड़ी। स्वकथा में सुनिए अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट का
19वां भाग। देखी सुनी और बीती घटनाएं, जीवन की देखी सुनी और बीती घटनाएं कब और किस प्रकार लेखक की रचना का अंश बन जाती हैं, कभी चेतन तौर पर तो कभी बिल्कुल अचेतन तौर पर, ये किसी हिसाब की पकड़ में नहीं आता। विशेषकर अचेतन तौर पर जो अनुभव किसी रचना का अंश बन जाता है, वो कई बार अपनी आंखों के लिए भी एक अचंभा सा हो जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर से जब मुलाकात हुई थी, बहुत छोटे थे, कविताएं भी तब लिखती थी पर बचकाने से। उन्होंने जब एक कविता सुनाने के लिए कहा तो सकुचा कर सुनाई थी, पर उन्होंने जो प्यार और ध्यान दिया था वो कविता के अनुरूप नहीं था, उनके अपने व्यक्तित्व के अनुरूप था। उसका प्रभाव मुझ पर गहरा हुआ। और फिर जब रवींद्रनाथ ठाकुर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तब मैंने उन पर एक कविता लिखनी चाहिए, कुछ पंक्तियां लिखी भी पर तसल्ली नहीं हुई। फिर मैं मॉस्को चली गई 1961 में। वहां जिस होटल में ठहरी थी उसके सामने मायकोव्स्की का बुत बना हुआ था, और जिस जगह वो होटल था उसका नाम गोर्की स्ट्रीट था। एक रात की बात, लगभग 10 बजे होंगे, मैंने होटल की खिड़की से देखा कि एक जन समूह मायकोव्स्की के बुत के गिर्द इकट्ठा है। ज्ञात हुआ कि कई नौजवान कवि रात के समय वहां आकर खड़े हो जाते हैं और बुत के चबूतरे पर खड़े होकर कभी वे मायकोव्स्की की कविता पढ़ते हैं और कभी अपने रास्ता चलते लोग उनके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं और कविताएं सुनते हैं, फरमाइशें भी करते हैं। और इस प्रकार ये खुला कवि सम्मेलन आधी रात तक चलता रहता है। हवा ठंडी लगने लगे तो लोग अपने कोटों के कॉलर ऊपर पलट लेते हैं, मेह बरसने लगे तो सिर के ऊपर छतरी तान लेते हैं। मैं भी कुछ देर के लिए कोट पहनकर इस खुले कवि सम्मेलन में चली गई। यूं तो मुझे रूसी भाषा का एक भी शब्द समझ में नहीं आया, पर उनके स्वर की गर्माहट मेरी समझ में जरूर आई। फिर जब मैं अपने कमरे में लौटी तो मेरे सामने रवींद्रनाथ ठाकुर का चेहरा भी था, मायकोव्स्की का भी और गोर्की का भी। सारे चेहरे मिश्रित से हो गए, जैसे एक हो गए हों। और उस रात रवींद्रनाथ ठाकुर वाली कविता पूरी हो गई। महरम इलाही हुस्न दी, खासद मनुखी इश्व दी, एह कलम लफानी तेरी, सौगात फानी जिस्म दी। आँख के पत्ते उपन्यास में उसका मुख्य पात्र जब रोज शाम के समय स्टेशन जाकर आने वाली गाड़ियों में अपनी खोई हुई बहन का चेहरा ढूंढता है, तो एक दिन अनायास ही उसके पैर उसे अपने गांव वाली गाड़ी के अंदर ले जाते हैं। जाड़े के दिन कोई गर्म कपड़ा पास नहीं, वो रात की ठंड में गुच्छा सा बैठ जाता है। विचारों में डूबा हुआ उसका मन नींद में भी डूब जाता है। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो उतरने चढ़ने वाली सवारियों की आहट से वो जाग उठता है। देखता है उसके एक रजाई लिपटी हुई है, एक बड़े नर्म से चेहरे का बूढ़ा आदमी पास की सीट पर बैठा हुआ है, एक खेस लपेटे हुए अपनी रजाई उसे उड़ाकर। एक दिन अचानक इस उपन्यास का ये अंश सामने आया तो याद आया, ये उपन्यास लिखने के 4 वर्ष पहले जब मैं रोमानिया से बल्गारिया जा रही थी, रात बहुत ठंडी थी, पास में अपने कोट के सिवाय कुछ नहीं था, वही घुटने जोड़कर ऊपर तान लिया था, फिर भी जब उसे सिर की ओर खींचते थे तो पैरों को ठिठुरन लगती थी, पैरों पर डालते थे तो सिर और कंधों को ठंड लगती थी। न जाने कब मुझे नींद आ गई, लगा सारे शरीर में गर्मी आ गई है। बाकी रात खूब गर्माइश में सोती रही। सवेरे तड़के जागी तो देखा मेरे डिब्बे में सफ़र करने वाले एक बल्गारियन आदमी ने अपना ओवरकोट मुझ पर रजाई की तरह डाल दिया था। ये घटना मैंने चेतन तौर पर इस उपन्यास में नहीं डाली थी, पर लिख चुकने के कितने ही वर्ष बाद जब पढ़ा तो लगा उस रात की गर्माइश मेरी रगों में कहीं एक अमानत की तरह पड़ी हुई थी। यात्री उपन्यास 1968 में लिखा था। उसकी एक पात्र सुंदरा बिल्कुल कल्पित थी। मैं उपन्यास के मुख्य पात्र की जन्म कथा जानती थी, उसके संबंध में लिखा भी था। नायक को जानती हूँ उस दिन से जिस दिन उसे साधुओं के एक डेरे में चढ़ाया गया था। बहुत बरसों की बात, पर अब भी ध्यान आ जाती है तो बहुत तराशे हुए नक्श वाला उसका सांवला चेहरा उसकी सारी उदासी समेत आंखों के सामने आ जाता है। पर सुंदरा मेरी कल्पना से निकलकर इस उपन्यास के पृष्ठों पर उतरी थी, और मेरी समझ में नहीं आता था कि सुंदरा का पात्र चित्रित करते समय मेरी आंखें क्यों भर भर आती रही थीं। उपन्यास लिखकर सबसे पहले इमरोज को सुनाया था, और सुनाते सुनाते जब सुंदरा का जिक्र आया तो मेरे अपने कलेजे को जैसे किसी ने कचोट लिया। फिर ये उपन्यास हिंदी में उलथा हुआ हर अनुवाद छपने से पहले सुना करती हूँ। इसे सुनते समय जब फिर सुंदरा की बात आई मैं बेचैन हो गई। उपन्यास हिंदी में छप गया तब 1969 था, पंजाबी में 2 वर्ष बाद छपा 1971 में। उसके प्रूफ देखते समय फिर जब सुंदरा आई तो मैं व्याकुल हो गई। अपने आप को इस अपने दिल में पड़ने वाली कसक का कुछ पता नहीं लगता था, पर 1973 में जब इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद हो रहा था उस समय जब सुंदरा सामने आई तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं अपनी नब्ज देख रही हूँ। लेखक के अपने जीवन की घटनाएं उपन्यासों कहानियों के पात्रों में सदा ढलती हैं, छाती के भीतर से उठती हैं, कागजों पर जा उतरती हैं। पर ये सुंदरा उसके विपरीत अनुभव है, ये कागजों में से उठकर मेरी छाती में उतर गई थी। अचानक लगा जैसे घोर अंधेरे में एकाएक दिया जल उठे कि ये सुंदरा मैं हूँ। मैं को मैंने चेतन तौर पर सुंदरा में नहीं ढाला था, इसलिए कई वर्ष तक इसे पहचान नहीं सकी थी। वो अपना अस्तित्व मुझे भीतर ही भीतर खरोंचता था। मैं मन की तहों को टटोलती थी फिर भी ये पहचान में नहीं आता था। पर जब पहचान में आया तो अपना एक एक विचार तक पहचान में आ गया। सुंदरा जब मंदिर में जाकर शिव और पार्वती के चरणों पर फूलों की झोली उलटती है ताकि जब वो शिव पार्वती के चरणों पर माथा नवाए तब फूलों के ढेर के नीचे से वहां फैलाकर मूर्तियों के पास खड़े हुए अपने प्रिय के पैरों को भी हथेली से छू ले और उसके हाथ पर किसी की नजर भी ना पड़े तो लगा ये मैं हूँ जो अनेक वर्ष के चेहरे की इस प्रकार कल्पना करती रही कि अक्षर ही अक्षर फूलों के ढेर की भांति अंबार लगा दिए और जिनके नीचे से वहां ले जाकर किसी को इस तरह छू लेना चाहते थे कि ऊपर से किसी देखने वाले को दिखाई ना दे। सुंदरा बहुत समय तक चुपचाप फूल चुनती रही और सबकी चोरी से अपने प्रिय के पैर छूती रही। मैं अनेक वर्षों तक कविताओं के अक्षर जोड़ती रही और चुपचाप अपने प्रिय के अस्तित्व को छूती रही। सुंदरा का प्रिय जीता जागता था, पत्थर की मूर्ति के समान था जिसे सुंदरा के मन का सेंक नहीं पहुंचता था। और मैं भी अनेक वर्षों तक सुंदरा की जगह पर खड़ी रही थी, मेरे मन का सेंक भी कहीं नहीं पहुंचता था। एक पत्थर जैसी चुप से टकराता था और सुलगता बुझता फिर मेरे पास ही लौट आता था। सुंदरा जब शरीर पर विवाह का जोड़ा और नाक में सोने की नथ पहनकर मंदिर में अपने प्रिय को अंतिम प्रणाम करने के लिए आती है, कुछ आंसू लुढ़क कर उसकी नथ के तार पर अटक जाते हैं, मानो नथ की आंखों में आंसू भर आए हों। और ये समूची मैं थे, मेरे हर चाप छल्ले की आंखों में इसी तरह आंसू भर भर आते थे। ओ खुदाया, कभी अपना आप भी अपने से इस तरह छिप छिप जाता है, ये अचेतन मन का कैसा खेल है।
ये था अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट का भाग 19। वाचन स्वर सुखनंदन बिंद्रा का था।